एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम अमेरिकी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम की बात करने वाले हैं, जॉन स्टाइनबेक। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और कैलिफोर्निया की मिट्टी, वहाँ के लोग, उनके जज्बात, क्या खूब लिखा है उन्होंने। सामाजिक यथार्थवाद, आम आदमी का संघर्ष, ये सब उनकी पहचान है।
और आज हम उनके शायद सबसे बड़े, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी उपन्यास ईस्ट ऑफ ईडन पर गहराई से बात करेंगे। स्टाइनबेक ने खुद कहा था कि ये उपन्यास लिखने के लिए ही उन्होंने बाकी सब लिखा, मतलब ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम काम था। अपने बेटों के लिए लिखा था। कैलिफोर्निया की सैलिनास वैली की कहानी है ये, जो उनके लिए घर जैसी थी। और ये बाइबल की कहानी केन और एबेल वाली, उसको आज के ज़माने में लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसकी पूरी कहानी देखेंगे, किरदारों के उतार चढ़ाव, और ख़ास तौर पे वो अच्छाई बुराई की लड़ाई और चुनाव की आज़ादी, टिम शल, उसकी बात करेंगे।
शुरू में तो लोगों को मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं, पर आज तो ये क्लासिक है।
बिल्कुल। और कहानी हमें सीधे ले जाती है कैलिफोर्निया की सैलिनास वैली। उपजाऊ है पर मुश्किल भी है। वहाँ दो परिवार हैं, ट्रास्क और हैमिल्टन। इनकी किस्मतें जुड़ी हुई हैं। ट्रास्क परिवार कनेक्टिकट से आया है, पैसे वाले हैं पर कुछ बेचैनी सी है उनमें। और दूसरे हैं हैमिल्टन, आयरलैंड से आए अप्रवासी, मेहनती, इज्जतदार, और उनके मुखिया हैं सैमुअल हैमिल्टन, बड़ी दिलचस्प आदमी। कहानी इनकी कई पीढ़ियों की है। कहानी की जड़ें वो ट्रास्क परिवार की पहली पीढ़ी में है। पिता हैं साइरस ट्रास्क। उनका जो फौजी रुतबा है ना, वो असल में एक बड़े झूठ पे टिका है। उनके दो बेटे हैं, सौतेले भाई एडम, सीधा साधा नेक दिल, पिता का चहेता, कुछ कुछ एबल जैसा। और दूसरा है चार्ल्स, ताकतवर, गुस्सैल, मेहनती भी है, पर भाई एडम से जलता बहुत है, केन की तरह।
हाँ, यहीं से वो, मतलब वो बुनियाद पड़ जाती है ना, पिता का झूठ, बेटों के बीच जलन, आगे जो तूफान आएगा उसके बीज यही हैं। और साइरस की वो रहस्यमयी दौलत भी, पता नहीं कहाँ से आई, वो भी एक साया की तरह रहती है।
हाँ, और ये बीज जल्दी ही फूटता है। एक जन्मदिन की बात है, एडम अपने पिता के लिए एक प्यारा सा पिल्ला लाता है कहीं से ढूंढकर, और चार्ल्स वो अपनी मेहनत की कमाई से एक महंगा चाकू लाता है, जर्मन चाकू। पिता क्या करते हैं, वो एडम के छोटे से तोहफे की तो खूब तारीफ करते हैं, लेकिन चार्ल्स के महंगे तोहफे को जैसे देखा ही नहीं। बस चार्ल्स का गुस्सा भड़क उठता है, वो एडम पर जानलेवा हमला कर देता है और उसके माथे पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है, वो निशान जैसे बाइबल में केन को मिला था।
बापरे, ये घटना तो जैसे पूरे उपन्यास का रास्ता तय कर देती है। केन और एबेल की कहानी का ये पहला राउंड, विरासत में मिली जलन, पिता का पक्षपात और हिंसा, एक ऐसा चक्कर जो शुरू हो गया है। सवाल उठता है, क्या इंसान अपनी विरासत से बच नहीं सकता? ये सवाल शुरू से ही है।
और फिर कहानी में आती है कैथी एम्स। दिखने में फरिश्ता, खूबसूरत, पर अंदर से शायद पूरी तरह अंधेरा। पता चलता है कि बचपन में उसने अपने माँ बाप को जलाकर मार दिया था, भयानक। एडम वो तो भोला है, आदर्शवादी, उसे लगता है ये कोई सताई हुई मासूम लड़की है। पर चार्ल्स, उसके अंदर शायद बुराई को पहचानने की कोई चीज थी, उसे देखते ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है।
मुझे हमेशा लगता है एडम का ये भोलापन, मतलब क्या वो सच में भोला था या वो देखना ही नहीं चाहता था? कैथी में वो वही देख रहा था जो वो देखना चाहता था, और इसी सोच के साथ वो कैथी से शादी कर लेता है, है ना?
हाँ, बिल्कुल। और शादी की रात ही कैथी चार्ल्स के पास भी चली जाती है। तो आगे जो बच्चे होंगे वो किसके हैं, ये शक शुरू से ही पड़ जाता है।
इसके बाद एडम कैथी को लेकर कैलिफोर्निया जाने का फैसला करता है। उसका सपना है वहाँ एक नया ईडन बसाने का, एक स्वर्ग।
एक नया स्वर्ग। लेकिन क्या उसे पता है वो अपने साथ क्या ले जा रहा है? ये उसका आदर्शवाद है या खुद को धोखा देना, जैसे वो सच्चाई से भाग रहा हो, खरीदता है। और यहीं उसकी दोस्ती होती है सैमुअल हैमिल्टन से। सैमुअल उसे बहुत मदद करते हैं। लेकिन क्या थी, उसे ना पत्नी बनने में दिलचस्पी है, ना माँ बनने में, कोई रुचि नहीं। वो जुड़वां बेटों को जन्म देती है, कैल और एरन, पर उसके तुरंत बाद वो एडम को गोली मार देती है और चली जाती है हमेशा के लिए।
अरे,
एडम का वो ईडन का सपना पल भर में खत्म, राख, वो टूट जाता है पूरी तरह, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सालों तक बस जैसे जिंदा लाश, दुनिया से कटा हुआ, बच्चों से भी बेखबर।
ओ
एडम की ये हालत देखकर दिल टूट जाता है, कैसे एक इंसान इतना बिखर सकता है।
लेकिन हाँ, दो लोग हैं जो उसे सहारा देते हैं, सैमुअल हैमिल्टन और उनका चीनी नौकर ली। इनकी मदद से वो धीरे धीरे उठता है, पिता होने की जिम्मेदारी समझता है। पर विडंबना देखो, होश में आने के बाद वो फिर वही गलती दोहराता है जो उसके पिता ने की थी। वो एरन को कैल पर ज्यादा ध्यान देता है।
क्यों? ये चक्कर क्यों नहीं टूटता? क्या पिता का प्यार हमेशा बढ़ जाता है? ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब शायद ली के किरदार में छिपा है। ली ट्रास्क परिवार का चीनी अमेरिकी रसोईया नौकर, पर असल में वो उपन्यास की आत्मा है। बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, दार्शनिक, दयालु, बच्चों के लिए तो पिता जैसा, कैल और एरन के लिए। शुरू में वो जानबूझकर टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है, पिटगिन। उस समय के नस्लवाद से बचने का, समाज में रहने का उसका अपना तरीका था। लेकिन जब वो अपनी असलियत दिखाता है, अपनी बुद्धिमत्ता, तो सब हैरान रह जाते हैं। और सैमुअल हैमिल्टन, वो तो जैसे उपन्यास के नैतिक केंद्र हैं, बुद्धिमान, प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़े हुए, एडम के लिए गाइड की तरह। उनकी मौत कहानी में एक युग के अंत जैसी लगती है, जैसे ज्ञान और सादगी का एक सोता सूख गया हो।
और कैथी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ गई? उपन्यास तो उसे लगभग एक दानव की तरह दिखाता है, जैसे उसमें जमीर ही ना हो। क्या सच में कोई ऐसा हो सकता है, या हालात भी बनाते हैं? खैर, कहानी बताती है कि वो परिवार छोड़ने के बाद अपना नाम बदल लेती है, केट एल्बे, और एक वेश्यालय की मालकिन बन जाती है। वहां वो मर्दों की कमजोरियों का फायदा उठाकर ताकत हासिल करती है, नियंत्रण। उसका अंत भी अकेलेपन में होता है, आत्महत्या कर लेती है, पछतावे की वजह से नहीं, शायद इसलिए कि उससे लगता है अब उसका नियंत्रण जा रहा है, कोई छुटकारा नहीं, बस खालीपन।
बहुत आदर्शवादी नजरों से देखता है, पवित्रता की तलाश में, पर वो कड़वी सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, बहुत नाजुक है। और दूसरी तरफ है कैल, सांवला, रहस्यमयी, हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं मां की बुराई उसमें ना आ गई हो। पिता के प्यार के लिए तरसता है, तेज दिमाग है, पर हमेशा गलत समझा जाता है। उसके अंदर लगातार एक लड़ाई चलती रहती है, अपनी बुरी इच्छाओं और अच्छा बनने की चाहत के बीच।
और यहीं पर, हाँ, यहीं पर ली की वो खो जाती है, टिमशेल।
हाँ,
ये शब्द कहानी को एक नई दिशा देता है। ली हिब्रू भाषा में बाइबल की वो कहानी पढ़ता है, केन और एबल वाली,
गहराई से।
वो पाता है कि जब ईश्वर केन से कहता है कि पाप दरवाजे पर है, तो हिब्रू शब्द टिमशेल इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब आदेश नहीं है कि तू पाप पर काबू पा, बल्कि एक चुनाव है, तू कर सकता है। दाउ मेस्ट मतलब रास्ता चुनने की आजादी तुम्हारे पास है। ये खोज उपन्यास का दिल है, तुम अपनी विरासत के गुलाम नहीं हो, तुम चुन सकते हो, ये कहता है ये शब्द।
हाँ, चुनाव करने की आजादी, कैल के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी जो हमेशा अपनी माँ के साये से डरता रहा। तो होता यह कि लड़के बड़े होते हैं, कैल अपनी माँ यानी केट की सच्चाई पता लगा लेता है, और ये सच्चाई एरन तक भी पहुंचती है। उसकी आदर्शों की दुनिया टूटने लगती है। इसी बीच एब्रा नाम की लड़की आती है, पहले वो एरन के करीब होती है, पर धीरे धीरे कैल की तरफ खींचने लगती है। उसकी जटिलता, उसके अंदर की लड़ाई को देखकर कैल, वो पिता का प्यार और सम्मान पाना चाहता है, एक आखिरी कोशिश करता है, बीन उगाने का व्यापार शुरू करता है। पहला विश्व युद्ध चल रहा है, वो अच्छा पैसा कमा लेता है, और फिर वो $15,000 लेकर अपने पिता एडम के पास जाता है, तोहफे के तौर पर। उम्मीद है कि शायद अब पिता उसे अपनाएंगे, उस पर गर्व करेंगे।
और यहीं उफ, कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दिल सच में टूट जाता है। एडम अपनी सख्त नैतिकता में कैल के पैसे को ठुकरा देता है, कहता है ये युद्ध का पैसा है, गंदा पैसा है। वो कहता है काश कैल ने पैसे की जगह एरन की तरह अच्छे चाल चलन का कोई मेडल दिया होता। ये तिरस्कार कैल को अंदर तक तोड़ देता है पूरी तरह। उसे यकीन हो जाता है कि वो कभी अच्छा बन ही नहीं सकता, बुराई ही उसकी किस्मत है। और इसी टूटे हुए दिल और गुस्से में वो बदला लेने के लिए एरन को उनकी माँ की सच्चाई दिखाने ले जाता है केट के वैश्यालय।
इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। एरन अपनी माँ की सच्चाई देखकर, उसके काम का वो घिनौना रूप देखकर, पूरी तरह टूट जाता है। उसका आदर्शों का संसार ढह जाता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और फौज में भर्ती हो जाता है, जहां जल्द ही युद्ध में उसकी मौत हो जाती है। बेटे की मौत की खबर सुनकर एडम को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसे स्ट्रोक आ जाता है, लकवा मार जाता है। और कैल, वो भाई की मौत और पिता की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। भयानक अपराध बोध में डूब जाता है। उसे लगता है वो सच में कीन है, श्रापित।
क्या भयानक त्रासदी है! एक पल का गुस्सा, एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उम्मीद की एक किरण है। ली का किरदार फिर सामने आता है।
हाँ बिल्कुल, ली मृत्युशैया पर पड़े एडम के पास जाता है। एडम लगभग बेजान है। ली इशारों में उससे विनती करता है कि वो कैल को माफ कर दे, उसे इस बोझ से आजाद कर दे। एडम अपनी बची कुची ताकत से कैल की तरफ देखता है और बस एक शब्द बुदबुदाता है, टिमशेल।
टिमशेल मतलब तुम कर सकते हो। ये सिर्फ माफी नहीं है, ये केल को उसकी जिंदगी चुनने की आजादी देना है। ये कहना है कि तुम अपनी माँ या अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम अपनी राह चुन सकते हो। ये शब्द जैसे पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप को तोड़ देता है और हमें केल और इब्रा के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत की उम्मीद दिखती है। तो ये कहानी हमें कई गहरे सवालों के सामने खड़ा करती है। सबसे बड़ा तो यही टिमशेल वाला मुद्दा है, चुनाव की स्वतंत्रता। क्या हम सच में अपनी किस्मत खुद बनाते? स्टाइनबेक का जवाब तो हाँ लगता है। ली की खोज, एडम का आखिरी शब्द, सब यही कहते हैं। केल की पूरी जिंदगी इसी की मिसाल है।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मुद्दा है अच्छाई और बुराई का संघर्ष। ये सिर्फ किरदारों के बीच नहीं है, जैसे एडम चार्ल्स या कैल एरन, ये किरदारों के अंदर भी है। कैथी शायद चरम बुराई है जिसमें यह संघर्ष है ही नहीं, पर कैल जैसे किरदार दिखाते हैं कि इंसान अच्छाई बुराई का मिश्रण है और असली लड़ाई अंदर की है। शायद यही संघर्ष हमें इंसान बनाता है ना? और ली और सैमुअल जैसे लोग अच्छाई की उम्मीद जगाए रखते हैं।
और पिता का प्यार या उसकी कमी या उसका गलत तरीके से मिलना कितना विनाशकारी हो सकता है। साइरस का पक्षपात, फिर एडम का वही दोहराना और कैल की तड़प, एडम का कैल के तोहफे को ठुकराना शायद कहानी का सबसे दर्दनाक पल है। दिखाता है प्यार ना मिलने का जख्म कितना गहरा होता है।
हाँ, और उससे जुड़ा डर भी है। क्या पुरखों के पाप हमें मिलते हैं? क्या ट्रास्क परिवार केन एबल के चक्कर में फंसा है? कैल तो यही मानता था, लेकिन उपन्यास आखिर में से चुनौती देता है। एडम को वो टिमशेल कहना जैसे इस चक्कर को तोड़ता है। विरासत असर करती है, पर वो किस्मत नहीं लिखती।
अरहा, सच और भ्रम का सवाल। एडम का कैथी को लेकर खुद को धोखा देना, एरन का आदर्शवाद जो सच नहीं झेल सकता, माँ के बारे में बोला गया झूठ, ये सब दिखाता है कि हम अक्सर मुश्किल सच से बचने के लिए वहम पाल लेते हैं। लेकिन स्टाइनबेग कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, आजाद होने के लिए सच का सामना करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो।
कहानी कहने का तरीका भी खास है। स्टाइनबेग हमें सबके मन की बातें बताते हैं, पर बीच बीच में वो खुद भी आ जाते हैं, हैमिल्टन परिवार के वंशज के तौर पर। इससे कहानी और निजी लगती है।
सही कहा। और बाइबल के प्रतीकों का इस्तेमाल, केन और एबल, वो ACCA नाम, सेलेनास वैली जैसे ईडन गार्डन, माथे का निशान, पानी और सूखा, ये सब कहानी को गहराई देते हैं। भाषा सीधी है पर उसमें दम बहुत है, महाकाव्य जैसा। और सेलेनास वैली, वो तो जैसे खुद एक किरदार बन जाती है, इतना सजीव वर्णन है।
भावनात्मक रूप से तो ये उपन्यास हिला देता है। चार्ल्स या एरन के लिए दुख होता है, ली और सैमुअल के लिए इज्जत और प्यार आता है, कैफी से डर लगता है, पर शायद सबसे ज्यादा जुड़ाव कैल से होता है। पिता के प्यार के लिए उसकी वो तड़ाप, उसका अंदरूनी संघर्ष, उसकी गलतियां और आखिर में वो उम्मीद। एडम का वो तिरस्कार वाला सीन, उफ, वो भूलता नहीं।
सच में इतनी तकलीफ, इतनी हिंसा के बाद भी ये उपन्यास नाउम्मीदी का नहीं है। ये टिमशेल के जरिए आशा देता है, चुनाव की शक्ति का संदेश देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने जीवन, हमारे परिवारों में विरासत और चुनाव की क्या जगह है।
ये याद दिलाता है कि अतीत का बोझ कितना भी हो, भविष्य का रास्ता हम चुन सकते हैं।
ये कहानी हमें विरासत की छाया और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की रोशनी, इसके बीच खड़े इंसान की कहानी दिखाती है।
और ये याद दिलाती है कि चुनाव करने की स्वतंत्रता ही शायद मानवता का सबसे अनमोल वरदान और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।